वेलकम बैक। बात हो रही है तालिबान और हुकूमत के दरमियान न होने जा रहे मुजाकरात की, जो साथ साथ चल तो रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि धमाकों का सिलसिला भी साथ साथ जारी है। उसके अलावा तालिबान की उस ख्वाहिश की कि तालिबान पाकिस्तान में खिलाफत लाने के ख्वाहिशमंद हैं। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और ये सब ब्रेक पर जाने से पहले यासिर साहब से बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि इसमें तो कोई शक ही नहीं था कि जब पहले भी धमाके हो रहे थे तो वो उन्हीं की जानिब से हो रहे थे। तो पर ये किस किस्म के मुजाकरात हैं, क्या है कि मतलब आप फ्रंट पे आके तो ये कहते हैं कि आप मुजाकरात कर लें, लेकिन पस पर्दा आप कार्रवाइयां भी अपनी जारी रखे हुए हैं।
देखिए, मैं गामदी साहब की बात से बहुत इत्तेफाक करता हूँ और वो ये बात बड़ी कमाल की है कि हमने गुज़श्ता 10-11 साल में ना उनके अवामल के ऊपर कोई गुफ्तगू की है और ना किसी और चीज के। हमारे पास सिर्फ दो हल हैं, मुज़ाकरात या ऑपरेशन। स्टेट पावर का जहां तक तल्लुक है, 11 अप्रैल 1978 को शाह ईरान ने एक तकरीर की थी मिलिट्री एकेडमी के फाइनल पासिंग आउट पे, और उसने ये कहा था कि मेरे पास 7 लाख फौज है, मेरे पास अमेरिकन स्वैक है, पता नहीं क्या क्या कुछ उसने अपने गिनाए थे, मैंने दुनिया में यह कर दिया है, वाइट रेवोल्यूशन। और उसी दिन कुछ तकरीबन 11 बजे के करीब एक जुलूस निकला था 100-150 स्टूडेंट्स का, डाइवर्स थे, तोता पार्टी के कम्युनिस्ट भी उनके अंदर शामिल थे और खालिस्तान रिलीजियस कट्टर बस वो लोग भी शामिल थे, तमाम लोग, सोसाइटी के तमाम तबकात जब किसी स्टेट के साथ मोहब्बत छोड़ दें तो उनको नहीं पता होता।
और सब आपको लगता है कि उनको नहीं पता तहजीब या तारीख यहाँ पर
ईरान की सूरत, ईरानी जितनी नॉन अग्रेसिव कौम है आप सोच नहीं सकते। आप मैं जिस जुबान में बोल रहा हूँ वहां ईरानी को नहीं बोलता, ईरानी जितनी आदाब और लखनऊ तो कुछ चीज ही नहीं है। आज भी वहां एक स्टेबल सोसाइटी, एक स्टेबल माजरा, एक फैमिली लाइफ की सूरत हाल वहां पर, लेकिन चूंकि सोसाइटी में रिप्रेशन, घुटन, उसके साथ साथ गुर्बत, अफला, क्योंकि आगे जो बंदा होता है ना उसको नहीं पता होता कि नारा क्या लग रहा है, उसको ये पता होता है कि मैंने, मुझे इस पुलिस वाले ने, मुझे इस पटवारी ने और मुझे इस स्टेट ने कुछ नहीं दिया, मेरे बेटे ने खुदकुशी की, मुझे मेरी जमीन कब्जा हुई, मेरे सब, ये एंगर जो होता है इसको लोग कैपिटलाइज करते हैं।
गांधी साहब ये और ये सब तो ईरान की मिसाल दे रहे हैं, लेकिन तालिबान तो इतने काम नहीं है, वो काफी पुरतशद्दुद नजर आते हैं।
तालिबान ने तो पहले दिन से तय कर रखा हुआ है कि वो खुदाई फौजदार है और उनको हमारी गर्दनों पर बंदूक रखकर हमसे शरीयत मनवानी है। देखिए, ये बात यह है कि रियासत ने क्या गलती की है, हमारी क्यादत ने क्या गलती की है, उन्होंने अवामिल का जायजा लिया या नहीं लिया, ये एक अलग बहस है और उसमें मैंने अपनी राय दे दी, लेकिन तालिबान के मौकिफ की ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। उनको शरीयत, इस्लाम जिसका वो नाम लेते हैं, इसका हरगिज हक नहीं रहता। इस्लाम में वो एक बदतरीन जुर्म का इर्तकाब कर रहे हैं, इस्लामी शरीयत की रूह से ये फसाद फैला रखता जुर्म है, इस बदतरीन जुर्म से हमें उन्हें बाज रखना है। और मेरे नजदीक इस मामले में हमारी दानिश ने भी आखिरी दर्जे की कोताही की है, यानी हम बहुत से अगर और मगर के साथ ये कहते हैं कि उनको ये करना है और उनको वो करना है, उनको क्या हक है कि वो एक पूरी कौम को यरगमाल बनाए, उनको क्या हक है कि वो खुदा की शरीयत का नाम ले, उनको क्या हक है कि वो इस्लाम से इस्तदलाल करने की कोशिश करें, इस्लाम में इस इस्तदलाल के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम में रियासत और हुकूमत का नज्म हर हाल में आमतुल्लाह कायम करते हैं, कुरान मजीद ने ऐलान कर रखा हुआ है कि अमरुहुम शूरा बैनहुम, ये इस कौम को फैसला करना है कि शरीयत क्या होगी, ये इस कौम को फैसला करना है कि इसका कानून क्या होगा, ये फैसला करने का तालिबान को नहीं है। हमारे यहाँ गुर्बत हो, इफलास हो, जो भी हो, ये इस बात का जवाब नहीं बनता। और मैं ये अर्ज करता हूँ कि वो अगर कोई सेकुलर ग्रुप होता तो मैं ये सारा इस्तदलाल सुन लेता, अज़राए करम वो खुदा की शरीयत और खुदा के दीन का नाम लें, और अगर वो खुदा की शरीयत और खुदा के दीन का नाम लेते हैं तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि शरीयत में जो बदतरीन जुर्म हो सकता है उसका इर्तकाब वो करे।
ये नहीं खान साहब, मैं बिल्कुल, मैं यहाँ पर आपके, मैंने कतन ये नहीं कहा कि शरीयत में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस बड़ी कायम है कि अल्लाह की, फरिश्तों की और उन तमाम अंबिया की लानत उस शख्स पर जो ताकत के साथ इकतदार पे कब्जा करे और फिर आम आदमी को दलील करे। शरीयत में तो अब तक सदीक जब आते हैं तो कहते हैं कि लोगों ने, लोगों तुम किसी और को मुंतखब कर लो, मेरी कोई मर्जी नहीं है। शरीयत में तो इस बात का मैंने, सर मैंने खान साहब बुनियादी तौर पर उन बातों के जिक्र किया, ये चीजें पैदा कैसे होती हैं, ये लठमारी कैसे पैदा होती है, यानी आप अंदाजा करें कि जिस वक्त वो ईरानियन रेवोल्यूशन ये शरीयत के नाम पे आया है तो उन्होंने तोता पार्टी की सूरत हाल में उन्होंने मुनाफिकीन कह कह के इस तरह बंदे मारे हैं, इस तरह बंदे मारे हैं, सोच ही सकते।
इसमें इसमें गुजारिश है कि हम इसको कहते हैं कंपेयरिंग एप्पल विद ऑरेंजेस। ये जो मिसाल इन्होंने ईरान की दी है ना आरिया साहब ने, मेरी गुजारिश इनसे ये है कि वो एक शफाक डिक्टेटर था जो कई दहाइयों से ईरान पर हुकूमत कर रहा था, उसके खिलाफ वो रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। इसका ताल्लुक दूर दूर तक कोई नहीं है इस बात से जो हम यहाँ बहस कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू बात यह है कि ये जो कोई भी दलील, कोई भी अवामिल जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये किसी किस्म की जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकते कतन, बाय एनी स्ट्रेच ऑफ द इमेजिनेशन। और तीसरी बात ये कि ये जो आप कहते हैं जी गुर्बत, अफलास और पटवारी और थानेदार और जुल्म और नाइंसाफी और वजीरिस्तान और इस्लामाबाद का फर्क, इसकी भी सुन लें। विद इन अमेरिका जो डिस्पैरिटी है विद इन स्टेट्स, इंट्रा स्टेट डिस्पैरिटी बिटवीन वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क या अदर स्टेट्स, वो 3 times है उस डिस्पैरिटी से जो वजीरिस्तान और इस्लामाबाद के दरमियान है। वो इंडिया में भी कई गुना ज्यादा है वो डिस्पैरिटी, और दुनिया के बेशुमार ममालिक हैं अफ्रीका समेत ऐसे जहां वो डिस्पैरिटी कई गुना ज्यादा है। कहीं पे भी ये इसको जवाब बनाकर इस तरह की मुतशद्दद कार्रवाइयां, और वो भी रिलीजन के नाम पर, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई स्टेट एक्सेप्ट कर ले, अनएक्सेप्टेबल होती है ये, कोई किसी किस्म का ये जवाब नहीं है। और ये इस तरह की दलील देना बहुत खतरनाक है। मैं गुजारिश करूंगा आर्या साहब से कि इसको प्लीज इस तरह का जवाब ना फराहम किया करें, गुर्बत और नाइंसाफी और ये वो, इसके लिए सिस्टम में जो सेफ्टी वॉल्व मौजूद हैं, जमहूरियत के, इंतखाब के, अदालतों के, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और भाषा इदारे हैं, उनके उनके उनको बुरोए कर लाते हुए सियासी जमातें हैं, आप प्रोटेस्ट लॉन्च कराएं, एहतजाज करें पुरअमन तरीके से। तब्दीलियां दुनिया में आती हैं और आई हैं, लोगों ने ये जो आप मिसालें देते हैं जिन मुल्कों की स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं और ये दूसरे जो ममालिक हैं जहां पर एक उन्होंने दुनिया में जन्नत बना डाली है, वो मुझे बताएं उन्होंने कौन सा वहां पे इस तरह की मुतशद्दद कार्रवाइयां करके ये सारा कुछ किया है। तो ये प्लीज इस तरह की हमें उसे बिल्कुल यहाँ पे परहेज करना चाहिए।
मिसाल के बाद देखिए, मेरी बात से पहली बात यह है कि तालिबान भी एक बदतरीन डिक्टेटर के जमाने के अंदर पैदा हुए, परवेज मुशर्रफ के जमाने 2007 में पैदा हुए। मैं तालिबान को मैं कतन जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मसला सारा यह है कि जिस वक्त भी कोई मूवमेंट चली है उस मूवमेंट के अंदर जब पब्लिक शामिल हुई है, आप तारीख उठा के देख लें, जितने भी इनकलाबात की, जितने भी रेवोल्यूशन की, जितने भी तब्दीलियों की, जितने भी लठमार ग्रोह की, लोगों को इससे कोई दिलचस्पी नहीं होती। नहीं, लोगों को इससे कोई दिलचस्पी नहीं होती कि आगे नारा इस्लाम का लग रहा है, कम्युनिज्म का लग रहा है, किसी और का। लोग अपना अपना दुख लेके बाहर आ रहे होते हैं, एक बात तो यह। और दूसरी बात यह है कि अगर अमेरिका की डिस्पैरिटी को आप पाकिस्तान की डिस्पैरिटी के साथ मिलाते हैं तो खुदा के लिए ये मजाक ना करें। अमेरिका के अंदर जैसी पैनी वहां से शुरू होती है, राइट नीचे फ्लोरिडा से और ऊपर तक, और अमेरिका का जो पर कैपिटा पर्सन है, कोई भूख, नंग, खुदकुशी की सूरत नहीं होती अमेरिका के अंदर। जिस तरह की सूरत, जिस तरह के अंदर फैसिलिटीज मौजूद हैं, जिस तरह के अंदर वो तमाम चीजें, मैं अमेरिका पूरे का पूरा घूमा है। पाकिस्तान का उसका जो बदतरीन जगह है वो इस्लामाबाद के बराबर में आता है।
इंडिया की बात
अगर ये बात नहीं, एक बेसिक लेवल होता है मैनिटीज का, एक बेसिक लेवल होता है सर्विस का, एक बेसिक लेवल होता है, वो अवेलेबल नहीं है उन हमारे मुल्कों में।
तो इंडिया में
ये कोई मिसाल नहीं है।
इंडिया में 18 मुल्क
देखें, इंडिया में कहां कहां मूवमेंट्स नहीं चल रही, इंडिया में कहां कहां मूवमेंट्स नहीं चल रही। देखें, अगर सोशल मीडिया को पोर्ट्रेट नहीं करता, 18 डिफरेंट जगह पे, कलकत्ता में, अलका नक्सल पार्टीज के
28 में से 20 रियासतें इफेक्ट हैं माओ मूवमेंट से। मैं एग्री करता हूं इस बात से, लेकिन उनका मुतालबा क्या है? मुतालबा सुने उनका, उनका मुतालबा ये है कि जो उनके इलाके के गरीब किसान हैं उनको जमीनें दी जाएं। ये किसी का मुतालबा नहीं है कि कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर और मद्रास में कौन सी औरत कौन सी पहनेगी, कौन से चर्च को आग लगाएंगे, कौन सी मस्जिद को वो ढा देंगे, कौन से मंदिर को ढा देंगे, ये किसी का मुतालबा नहीं है।
इसीलिए वो लोगों नहीं, ये कोई बताए नारा लगाने का अपना हर बंदे को आता है, लेकिन मतलब यह है कि कोई ये बंदा नहीं कर, इसी के बुनियाद पे कत्ल भी करते हैं, वो आर्मी से जंग भी करते हैं, वो बकायदा गुरिल्ला ट्रेनिंग भी लेते हैं। इसका मतलब यह है कि जमीन लेने के लिए तो गुरिल्ला ट्रेनिंग जायज है और किसी और नारे के लिए जायज नहीं है।
सारी दुनिया में वायलेंट मूवमेंट चलती हैं और हिस्ट्री जो है वो डिसाइड करती है, मॉरल वर्डिक्ट उसका हिस्ट्री दे देती है। लेकिन ये जो मिसाल है ना कि ये कौन तय करेगा कि लंदन में कौन कौन सी चर्च में जाएगा, कौन सी औरत कितना लंबा स्कर्ट पहनेगी, ये किसी मुल्क में ऐसे नहीं हुआ और ना किसी ने कहीं मुतालबा किया।
ये तो कोई इनको एडवोकेट नहीं करता, ये कोई एडवोकेट नहीं करता।
इतनी बात है, हम ये कह रहे हैं कि ये कोई
डिफेंस ना करे। मैंने पहले कह दिया, इसी बात से शुरू करेंगे। बिल्कुल इसी बात से शुरू करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। मूवमेंट जमीन के लिए जायज है, मजहब के लिए जायज है, इसी का जवाब हम वापस आके गांधी साहब से लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना है, तेजी सेवन के साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी, कुछ बहस इस जाने चल पड़ी थी कि मूवमेंट किस तरह से जायज है, जमीन के लिए जायज है या फिर मजहब के लिए जायज है। गांधी साहब, यही सवाल हम आपकी तरफ लेके आएंगे, या फिर इन दोनों सूरतों को कंपेयर भी किया जा सकता है?
या आप जिस चीज के लिए चाहे तहरीक चलाइए, जेर बहस ये है ही नहीं है। अफगानिस्तान में आप क्या चाहते हैं, पाकिस्तान में क्या चाहते हैं, हिंदुस्तान में क्या चाहते हैं, कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, फलस्तीन के लोग क्या चाहते हैं, जो भी वो चाहते हैं उसको अपनी तहरीक का उन्वान बनाएं, उसके लिए जद्दोजहद करें। असल एतराज वहां पैदा होता है जहां आप ये फलसफा बयान करते हैं कि एक मखसूस गिरोह को ताकत के बलबूते पर दूसरों के ख्यालात बदलने का हक है, उन पर किसी चीज को नाफिज करने का हक है, लोगों की जान लेने का हक है, उनके ऊपर हुदूद और कवानीन के निफाज का हक है। बुनियादी बात यह है, किसी भी तहरीक के लिए लोग काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात। गुर्बत के खात्मे के लिए तहरीक चलाएं, लोगों का मेयार जिंदगी बुलंद करने के लिए तहरीक चलाएं, इलाकाई मकासद के लिए तहरीक चलाएं। आजादी की तहरीकें जगह जगह चलती रहती हैं। किसी चीज पर एतराज उस वक्त पैदा होता है जब लोगों की जान माल और आबरू के लिए आप खतरा बन जाते हैं, इसका किसी को हक नहीं है। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान में एक जमहूरी निजाम पर इत्तेफाक हो चुका है, हम इस बात को मान चुके हैं। यानी यहाँ बदतरीन डिकेटरों के जमाने में भी ये माना जाता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत रहनी है, यहाँ इंतखाबात होने हैं, यहाँ लोगों को हक हासिल है कि वो अपनी क्यादत का इंतखाब करें। तो जिसको जो तहरीक चलानी है वो आए, लोगों के सामने अपना नुक्ता नजर पेश करें, और जो कुछ भी वो लोगों से मनवा लेगा उसकी बुनियाद पर वो हुकूमत करने का भी हक रखता है। इसमें दो राय नहीं है। असल सवाल ये है कि आपने तरीका क्या इख्तियार किया है। तालिबान का फलसफा बुनियादी तौर पर यह है कि वो ये कहते हैं कि एक मखसूस गिरोह को हक हासिल है कि वो बंदूक के जोर पर हमसे अपनी राय मनवाएगा। असल एतराज इस पर है, ये बलूचिस्तान में कोई आदमी करेगा तो उसके बारे में भी मैं यही राय दूंगा, ये कश्मीर में कोई शख्स करेगा तो उसके बारे में भी यही राय दूंगा। मैंने आपसे उसूल की बात की है कि लोगों पर हुकूमत करने का हक किसको है, इसका फैसला या खुदा करता है या लोग करते हैं, तीसरे किसी शख्स को हक हासिल नहीं है, ना किसी तबके को, ना किसी गिरोह को, ना सालहीन की किसी जमात को, ना किसी पोप को, किसी को हक नहीं है। ये फैसला या खुदा करता था और या लोग करते हैं, इसके सिवा कोई हुकूमत भी जायज हुकूमत नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत जो इससे पहले कायम थी वो भी शरीयत की रूह से एक नाजायज हुकूमत, वो अफगान अवाम की मर्जी के बगैर कायम हुई थी, वो बंदूक के जोर पर कायम की गई थी, वो बिल्कुल उसी तरह की एक नाजायज हुकूमत थी जिस तरह परवेज मुशर्रफ की हुकूमत एक नाजायज हुकूमत थी।
अच्छा, इसमें एक चीज और करने, गांधी साहब ने तो बहुत खूबसूरत देखिए, मेरी बात सुने, पहली बात तो ये है कि मैं 100-125 साल कम्युनिस्ट मूवमेंट चली, उन्होंने रिवोल्ट किए, रशिया में रिवोल्ट किया, चीन में रिवोल्ट किया, दुनिया पूरी ने उनको लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स माना, क्यूबा में रिवोल्ट किया। ये फलसफा अपनी जगह, मैं गांधी साहब के बात से 100% इत्तेफाक करता हूं कि होना ये चाहिए, ठीक, कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कि असल बहस यह है कि आपने इस वक्त जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है। देखिए, मसला सारा यह है कि जब एक आइडियोलॉजिकल बेस बन जाता है, गलत बन जाता है, तरीकेकार गलत इख्तियार किया जाता है, तो दुनिया में किसी तरह की भी सूरत हाल हो उसका इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है। क्यूबा में आप करते हैं तो वो उठता है चीगवेरा जाके, वहां जाके लड़ता है किसी दूसरे मुल्क से, सार्त्रे वहां जाके जाकर जदार में लड़ता है, ये सारे काम होते हैं। अब आप इराक में हमला करेंगे, आप अफगानिस्तान पे हमला करेंगे, कोई ना कोई एक छोटा सा ग्रुप भी हो उसको रिएक्ट करेगा, ये रिएक्शंस हैं। मैं इसको हम उसको कोई आइडियोलॉजिकल बेस बेस बना लेते हैं, कोई स्टेट पावर की सूरत हाल में, ओ भाई मैंने मिसाल दी, 7/7 जब हुआ था तो पूरा बर्तानिया बैठ गया था कि रूट कॉज क्या है और कहां जाकर हम इनको ठीक करना है, कहां हमसे नाराजगियां हो गई हैं, कैसे हम इनको आगे लेके जाएंगे। ये था बेसिक एसेंस मुआशरों को हल करने का कि मजीद लाशें नहीं उठानी, ना ना फौजी की लाश उठानी है, ना आम आदमी की उठानी है, कहीं किसको रिजॉल्व करो किसी तरह पे। ये है बेसिक, उसमें कोई मुखलिस नहीं, ना स्टेट मुखलिस है, ना तालिबान मुखलिस है।
जी यासिर साहब,
बात यह है कि ये जो रिएक्शंस की बात है ना, ये हम बहुत सुन चुके हैं। हम स्टार्ट यहाँ से हुए थे ना कि तालिबान का तो वजूद ही कोई नहीं है, ठीक है, एंड वी आर नाउ एंडिंग अप विद द डिमांड ऑफ एनफोर्सिंग देयर वर्जन ऑफ सो कॉल्ड सिस्टम, ठीक है जी। ये जो रिएक्शन है, ये ड्रोन का रद्द अमल है, ये फला अमरीकी जंग का रद्द अमल है, ये इस इस पूरे नरेटिव की धज्जियां उड़ चुकी हैं। इस पूरी दलील में अब कोई जान बाकी नहीं रहेगी कि ये उसका रद्द अमल है। मुझे ये बताएं कि ये गले काटने भी जो है किसी चीज का रद्द अमल हो सकता है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन हो सकती है, दुनिया में इसकी कोई तावील मुमकिन है? मुझे ये नहीं कि मुझे तो इस आर्गुमेंट की समझ नहीं आती जो आपने मिसालें दी हैं। ये सब की सब जो है ये बिल्कुल, और मैंने जैसे बात की ना कि ये हिस्ट्री का जो मॉरल वर्डिक्ट आता है वो इस बात पर आता है कि आपकी जो मूवमेंट थी वो उसका मकसद क्या था। और जैसे गांधी साहब ने बयान किया ना, असूल बयान कर दिया कि अगर आपने जिद्दोजहद करनी है गुरबत और नाइंसाफी के खिलाफ तो आप एक पुरमन जिद्दोजहद करें, सारी दुनिया आपको सलाम पेश करेगी, लेकिन किसी ग्रोह को, मुसल्ला ग्रोह को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो गन पॉइंट के ऊपर ये कहे कि जनाब ये सिस्टम यहाँ पर लागू होगा क्योंकि हमने कह दिया है। बस ये एक असूल है बुनियादी सा, और इसी पर मेरा जो है ना गांधी साहब से 100% इत्तफाक है, और कोई इसमें दो आ रहा है। जमहूरियत हमने तय कर लिया, आइन हमने लिख दिया इस मुल्क में, अब हम वो तयशुदा बातों को दोबारा से ब्लैक बोर्ड पर ले जाना चाहते हैं तो इस मुल्क को तो फिर गारों में, गारों के जमाने में धकेलने वाली बात होगी।
वहां हम क्या करें यासर भाई, यासर मेरे प्यारे, वहां हम क्या करें कि जब स्टेट आके किसी मुल्क पे कब्जा करे, उसका आइन ड्राफ्ट करे, उसके यहाँ 8-10 लाख बंदा मारे, अपनी निगरानी में इलेक्शन कराए, और कहे जाहिल के बच्चों ऐसे जिंदा रहते हो तो जिंदा रहने देंगे वरना नहीं रहने देंगे। अब अफगानिस्तान में या इराक को, वहां हम क्या करें? वहां हम ये करें कि ठीक है भाईजान आप आपकी बात मानते हैं क्योंकि आपके पास आप सुपर पावर है, आप मान
लो। मेरी अर्ज सुने ना, अर्ज सुने, वो हमला क्यों हुआ? वो हमला इसलिए हुआ क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान ने उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले करने से इनकार कर दिया, उनको मोहलत दी गई थी कि इसको हमारे हवाले कर दो, उन्होंने इनकार किया, और उन्होंने ये बात जो नहीं कि उनके मुल्क पर हमला करके उनकी इंसेंट बजा दी जाए, ये उन्होंने
14 के 14 बंदे सऊदी अरब से हैं, सऊदी अरब पे हमला हुआ, एक बंदा अफगानिस्तान
का
14 के 14 लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पढ़े हुए, क्या किसी एक बार लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बंद कर दो यार, ये बहाना बताओ पढ़े लिखे आपने, प्लीज प्लीज अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान जैसे रिमोट जगह से अमेरिका पे हमला नहीं हो सकता।
बहुत शुक्रिया मौजूद थे यासर पीरजादा साहब, जावेद खान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है, मजीद खबरों अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए जियो 23 के साथ।